की हर खंभे के ऊपर चढ़ के बैठ गए।
हाँ जी, तो अब ये देखिए ना, अब ये स्पीड थ्रिल्स एंड बट साहब किल्स, तो अब मसला ये है कि एक एक
सर आप जैसे सारे के सारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट बैठे हैं और ये ब्यूरोक्रेसी काबू भी नहीं आती। इमरान खान की आपने भी वोट दिया, आपको बताया कि चलने ब्यूरोक्रेट्स ने भी नहीं दिया, उसकी अपनी भी गलतियां थी बेशुमार, मगर ब्यूरोक्रेसी ने भी अगर लगन नहीं बदल नहीं दिता। ते ए, 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 पढ़ाई का आलम ए वे कि भाई आखिर किसी ने प्रूफ रीडिंग की होगी तो बट साहब कितने चढ़ गए खंभे दे।
एग्जैक्टली माई पॉइंट, देखें एग्जैक्टली माई पॉइंट कि जी ये कैसे हो सकता है, एक ड्राफ्ट बना होगा, एक प्रिंटर के पास गया होगा,
प्रूफ रीडिंग हुई होगी।
तो एक ट्रेडिशनल सिस्टम था दुनिया में चीजें करने का, मतलब हमारे जमाने की ब्यूरोक्रेसी में ये नहीं हो सकता, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये किसी ने देखा होगा ना, ये कैसे यहां।
और सर ये कोई छोटा फॉन्ट भी नहीं है, ये बोल्ड में है, BUTT एडा वडा ले।
हाँ जी, तो मतलब आप क्या जहालत अपनी डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन हम आजकल की दुनिया बड़ी अजीब सी हो गई, हम हर चीज जल्दबाजी में, जो ड्यू प्रोसेस है उससे लोग चिढ़ते हैं। अब जैसे किसी को कहेंगे यार ये प्रूफ रीड हुआ है, वो प्रिंट होकर वापस आया है, वो किसी ने अप्रूव किया है, किसी ने देखा है, क्या है। जैसे ही आप प्रोसीजर की बात करेंगे, प्रोसेस की बात करेंगे, ड्यू प्रोसेस की बात करेंगे, तो हम एक ऐसी इंटरनेट जनरेशन हो गए हैं कि हम न ड्यू प्रोसेस सुनना चाहते हैं, न वो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हम चाहते हैं। हम गवर्नमेंट को ऐसा पता नहीं क्या रन करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट का एक अपना मिजाज है और उसका एक अपना ठहराव है, उसने सोचना है।
सिर्फ बातें ज्यादा हैं, मुकाबला सख्त है, मगर इतना मैं कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। कनाडा में तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हमारे मुल्क में डीप सीक जो आई है वो तो बहुत सस्ती है, आप तो स्पेलिंग चेक आपके साथ साथ होते चले जाते हैं। मैं सर जो आपसे अगली जिक्र करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 4-स्टार आर्मी जनरल को फायर किया, नॉट वन मोर एंड कलर्ड स्किन, एंड किसी की जरूरत नहीं हुई माई की लाल की। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग कितनी बढ़ गई।
अब यही देखे ना जी, तो जो अपने जर्नलों को काले पीले होने पे ये हो सकता है और उससे रेटिंग बढ़ रही है, तो इसमें इसके लिए मुझे और आपको सोचना पड़ेगा ना जी कि हम
सर हमें सोचने की जरूरत थी, हम तो कानून में चेंज करके जूरी बदलवा लेंगे ना, हम तो हर चीज में तरमीम ले आएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे जो है, मेरा
हमें एज कैनेडियंस या हमें ब्राउन स्किन्ड एज अमरीकी के जी, मैं बड़ा बड़ा जनरल बन गया हूँ, तो भाईजान ये आपकी औकात है, तो ये अब फारिग।
अच्छा, मेरा आखिरी जी सॉरी अब बात कर लें
जी जी, इस इवेंट पे मैं ये सोच रहा था कि फौज में हम ठीक है, पाकिस्तान की फौज को बड़ी गालियां देते हैं और ठीक है शायद देनी भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि यार एक इंस्टीट्यूशन है ना, उसका एक हेड है, मतलब इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, हम ऐसे इंस्टीट्यूशन लगे रहते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड है, एंड दिस इज अ वेरी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन किल्स एंड डाइज, राइट, इट्स अ वेरी वेरी हार्ड कोर ऑर्गेनाइजेशन, उसके चीफ को आप उठा के इस तरह बाहर फेंक देते हो एंड देर इज नो रिएक्शन,
अवाम का भी कोई रिएक्शन नहीं है और फौज ने भी चढ़ाई नहीं की ओवल ऑफिस,
फौज का रिएक्शन आना चाहिए,
फौज ने चढ़ाई नहीं की ओवल ऑफिस के ऊपर कोई।
तो
सर
शायद फिर साडा वाला सिस्टम थोड़ा सा बेहतर है, इस तरह तो नहीं हो सकता किसी के साथ।
आखिरी सवाल, हम अपनी बैगेज के साथ आए और क्विक आंसर चाहिए क्योंकि शाजिया मेरे सर पे तलवार लेके खड़ी हुई है। मेरा क्विक आंसर है सर, 4 लोग डिबेट में आएंगे कनाडा की जो लिबरल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन के लिए, रूबी ढल्ला, शी इंडियन निजात, ये मेंबर पार्लियामेंट भी रही, ये जस्टिन ट्रूडो के बहुत करीब भी थी, मगर जब ये मेंबर पार्लियामेंट थी चंद एक एलिगेशन आए थे, तब इनकी कोई नैनी थी कि वही के जो हम देसी बाजू का नैनीज के साथ करते हैं, कुछ सब उस हवाले से एलिगेशन आए थे, दरम्यान में शी वेंट बैक होम इन इंडिया। अभी उनको 22 क्वेश्चन दिए गए जिसमें एक सवाल था कि 12 लोगों ने, देखिए कितना खूबसूरत सिस्टम है, कितना क्लियर सिस्टम है ये वाला, कि 12 लोगों ने में डोनेशन दी, एक ही मास्टर कार्ड इस्तेमाल या वीजा इस्तेमाल किया गया। लिबरल पार्टी ने 22 सवाल उनको दिए, जिसमें एक था कि इन 12 लोगों के आप एक अकाउंट दिखा दें, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने कहा कि इंडिया की इंटरफेरेंस इलेक्शन में आ रही है, तो रूबी ढला को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। बट शी सेज कि शी विल बी देयर इन द डिबेट। हालांकि 4 कैंडिडेट फाइनल हुए हैं। आज उनकी एलिगेशन आया है कि $350,000 इसकी फीस थी, तो जब तक उन्होंने, हाँ उनका एक सवाल ये भी था कि ये जो उन्होंने 350,000 दिया, ये पैसा कहां से आया। हालांकि शी इज अ रिच गर्ल, तो शी इज वेरी अपसेट एंड शी सेज कि आई विल बी द फर्स्ट ब्राउन कलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा। एनी क्विक थॉट अबाउट इट? क्विक थॉट,
I think they have a beautiful system so far. अभी मेरे एक दोस्त हैं, उनको MP का टिकट मिला है, वो इसी प्रोसेस से गुजरे हैं, तो आई एम काइंड ऑफ अवेयर विद दैट प्रोसेस। बहुत अच्छा प्रोसेस है। मेरा ख्याल है कि कैनेडा इस वक्त एक ब्राउन खातून प्राइम मिनिस्टर के लिए वैसे भी रेडी नहीं है, और मेरा ख्याल है शी इज नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन हर सेल्फ के भाई जान, ये 12 बंदे एक ही क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट कर रहे हैं, और दुनिया में इंटरफेरेंस फॉरन हो रही है। I think this will be a burden for the brown community at this point in time to carry, even if she was allowed by the Liberals. I don't think the Liberals will allow her, because this is a very serious question and there are a couple of serious questions about it.
Thank you.
So I don't think it's in the interest of the South Asian community for her to even...
बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरा एक और आखिरी सवाल है कि जब मैं वेस्ट को देखती हूँ, चाहे आप आयरन लेडी की बात कर लें, चाहे आप वेस्ट की जितने लीडर्स को देख लें, जो रूलिंग है मुख्तलिफ मुल्कों की प्राइम मिनिस्टर, दे आर वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मगर हम जिस सिस्टम को करते हैं, क्या वजह है कि हम औरतें अपना हुलिया बिगाड़ के बहुत बारबीज बन के क्यों आना चाहती हैं? इसका मुझे जवाब आपसे चाहिए, जरूर दीजिएगा। जनाब आशीर अजीम सर, बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू
वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्लीज अपना कमेंट भी जरूर दीजिएगा एंड प्रोग्राम को देखिए। वी नीड योर फीडबैक। अभी इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक मेरा आपका अल्लाह हाफिज।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
एंड्रियो केनिया, इंतखाब कीजिए 27 फरवरी को एंड्रियो केनिया का ब्रैम्पटन वेस्ट से।
एंड्रियो केनिया, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर जस्टिस क्रिटिक एंड पब्लिक सेफ्टी कमेटी मेंबर।
एंड्रियो केनिया की तरजीहात में पब्लिक सेफ्टी नंबर वन, इन्वेस्ट मोर मनी इन 911, इंक्रीज पुलिस फंडिंग, इन्वेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट टू फाइट द क्राइम,
3 फुली फंक्शनल हॉस्पिटल्स फॉर ब्रैम्पटन, एवरीवन हैज एक्सेस टू ए फैमिली डॉक्टर।
इनकम टैक्स को काटेंगे, रिमूव करेंगे HST, होम हीटिंग एंड हाइड्रो से डबल करेंगे अमाउंट ऑफ ODSP,
फाइट फॉर लोअर ऑटो इंश्योरेंस रेट इन ब्रैम्पटन, एंड वी विल वर्क हार्ड टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम।
वोट फॉर एंड्रियो केनिया इन ब्रैम्पटन वेस्ट। दिस इज अ पेड कमर्शियल बाय एंड्रियो केनिया ऑफिस।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना
भाई। बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है, और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह, 6472903773।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गालिक कीजी, सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
मार्ट कार्नी कई साल तक ट्रूडो दी लिबरल सरकार दे सलाहकार रहे। साबन टैक्स कार्नी ने ही ट्रूडो दी मदद की थी। फूड दे उते टैक्सेस लगे, करां दीयां कीमतां दुगनियां होईयां अते कार्बन टैक्स 60 सेंट प्रति लीटर तक पहुंचिया। मार्क कार्नी दी जस्टिन वर्गे ही ने। कार्नी दी जित कैनेडा दी हार है।
दिस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय द कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कैनेडा।
Messages there. वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद जनाब। आज भी आपका हमारा साथ तकरीबन 6 बजे तक रहेगा। हमारे स्टूडियो में शाजिया मलिक साहिबा जो है गर्मा गर्म खबरें लेकर पहुंच चुकी हैं, अपनी खट्टी मीठी खबरें, पुरानी खबरें विद 4 फॉलोअर्स, 4 अभी तक 5 नहीं हुए। हम वेट कर रहे हैं उस 5वें का जिसको वाटर कूलर भी मिलेगा, लेकिन आइए उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
WS कैसे हो?
अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप क्या बताइए।
बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज हमारे साथ जो है फॉर्मर क्रिकेट कनाडा के प्रेसिडेंट जो है रिशपाल बाजवा साहब, वो जुड़ेंगे और जो कल के फायरवर्क्स हुए थे उसके ऊपर बात करेंगे। तो हम फटोफट अपनी खबरें देते हैं क्योंकि 5:30 फिर जो है उन्होंने हमारे साथ जुड़ना है। ठीक है जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय जो है वो आप पता ही है कहां से मिलते हैं अच्छे कपड़े, स्पेयर एंड मके। ठीक है जी, एक तो उनके पास आप जरूर जाएं, अच्छा खाना मिलता है आपको विलेज टेस्ट पे, वैसे जटा के पास जाएं, एंड लाइफ टाइम ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं जनाब दान अलवी साहब, उनके पास जरूर जाएं अगर आपको अच्छे जो है वो इंश्योरेंस के पॉलिसीज चाहिए। और हमारे जो हैं सुल्तान भाई ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे बंडल डील्स के लिए जाएं। अच्छा जनाब, कनाडा जो है उसने $5 बिलियन जो है वो और $5 बिलियन क्योंकि ऐसे अमीर बहुत हो गए हैं ना, $5 बिलियन एड देगा और यूक्रेन को। और वो कहते हैं जी ये सारे फंड जो है हमने जो सीज किए हैं रशियन एसेट से, अब ये पता नहीं कितना सच है। बहरहाल ट्रूडो साहब ने यह कहा एट पीस एंड सिक्योरिटी समिट इन कीव, जहां पे 12 और भी वर्ल्ड लीडर्स आ चुके हैं टू मार्क द 3rd एनिवर्सरी ऑफ इन्वेजन। और उन्होंने कहा जी कि ये हम यूक्रेन को प्रोवोक किया गया था तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हम इनके साथ खड़े हुए हैं और इनकी हिस्ट्री को खत्म करने की रशिया जो है वो कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा जी कि 25 मोर आर्मर्ड लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स जो है वो भी हम देंगे, इसके अलावा जो एनर्जी की सिक्योरिटी है वो भी हम इनको प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने सपोर्ट किया था कनाडा ने, और ट्रूडो साहब ने आपको पता ही है कि जो इनकी बिट थी टू बी पार्ट ऑफ नेटो उसके लिए, लेकिन आज की जो इनकी 7 मिनट की स्पीच थी ट्रूडो साहब की उसमें इस बात का कुछ भी जिक्र नहीं था। ऑन्टेरियो के मेन पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं जी वो अब आखिरी बिल्कुल हफ्ता रह गया उसके कैंपेन ट्रेल के ऊपर हैं जो, तो आज के दिन डकफोर्ड साहब जो है उन्होंने अपने पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है उसको रिलीज किया। उन्होंने कहा कि हमारा बिल्कुल प्लान है कि हम ऑन्टेरियो के वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करेंगे, डायवर्सिफाई करेंगे अपने इकोनॉमी को, गुड पेइंग जॉब्स क्रिएट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। और उन्होंने कहा जी कि हमें पता नहीं है कि ट्रंप साहब जो है वो आने वाले दिनों में क्या करेंगे, लेकिन हमको बिल्कुल क्लियर रहना है कि हमको क्या करना है। हम ना तो 51st स्टेट बनेंगे ना तो कनाडा सेल के लिए है। एनडीपी की मैरिट स्टाइल्स और बॉनी क्रॉम्बी जो थे उन्होंने अपने ऑलरेडी जो थे वो फ्राइडे के दिन, ये जो भी गुजरा है लास्ट फ्राइडे, उसको अपने प्लेटफॉर्म जारी किए थे और उसमें भी बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे। ग्रीन पार्टी के माइक श्नाइडर जो थे उन्होंने February 12 को ही अपना प्लेटफॉर्म जारी कर दिया था। फोर्ड और क्रॉम्बी जो थे आज ट्रोनो के अंदर थे, स्टाइल्स जो थी वो वेस्टर्न ऑन्टेरियो में थी, श्नाइडर जो थे वो कॉटेज कंट्री में थे विद लोकल कैंडिडेट। और इलेक्शन तो आपको पता ही है थर्सडे है, लेकिन एडवांस पोलिंग जारी है, अगर आप पहले जाके करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ऑन्टेरियो में जो अब एक और नैनोस का पोल आया है उसके मुताबिक फिर ये जो लास्ट वीक अब शुरू हो गया है इसमें भी पीसी पार्टी और डकफोर्ड साहब जो हैं वो बनाए हुए हैं अपनी लीड। 927 ऑन्टेरियो एडल्ट्स का शो ने, का सर्वे ने शो किया कि 44% जो डिसाइडेड वोटर है वो पीसी के लिए ही सपोर्ट करेगा, 29% लिबरल, 18.8% एनडीपी, 4.8% ग्रीन, और जो अनडिसाइडेड वोटर है वो उसमें और डिसाइडेड वोटर जो अगर कंबाइन करे तो भी जो पीसी पार्टी के पास 40% सपोर्ट है, लिबरल 26.4%, एनडीपी 18.4%, ग्रीन 2.2%, अदर्स 9.1% अभी भी अनडिसाइडेड है। ट्रोनो के अंदर 39% जो है वो वोटर लिबरल्स को वोट करता है, 30.7% पीसी, 24.9% एनडीपी, 4.3% ग्रीन, लेकिन जीटीए में जो है डिफरेंट है पिक्चर, 51% सपोर्ट करता है पीसी के लिए, 30% लिबरल्स के लिए, और जो प्रेफर्ड पिक है एज प्रीमियर वो फोर्ट साबी है 39.1%, क्रॉम्बी 23.7%, स्टाइल 17.1%, माइक श्राइनर 7.7%। और ये जो सर्वे था ये February 21st से 23rd के बीच में किया गया था। अटॉर्नी जो हैं जी फेडरल वर्कर्स फॉर फेडरल वर्कर्स, उन्होंने आज कैलिफोर्निया के फेडरल कोर्ट जो है उसके अंदर एक लॉ सूट फाइल किया, यानी सू किया है एलोन मस्क को, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि उन्होंने वायलेट किया है लॉ जब वीकेंड के ऊपर इन्होंने डिमांड किया कि एम्प्लॉयज क्या क्या काम करते हैं उसका सारा डिटेल चाहिए और अगर उन्होंने नहीं बताया तो उनको फायर किया जाएगा। ये लॉ सूट जो है इसमें उन्होंने कहा जी कि हम ये जो मैस ले आउट्स है इसको ब्लॉक किया जाए, क्योंकि मस्क साहब ने एक ईमेल भेजा था और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को किया था पर्सनल मैनेजमेंट ऑफिस ने, और उसमें उन्होंने कहा था जी कि आप वीक का एंड जो है उस तक मुझे जवाब देंगे। मस्क जो है वो ओवरऑल कर रहे हैं, जाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जैसे कि ट्रंप साहब ने कहा है कि हम वेस्टफुल जो फंडिंग है उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने थ्रेटन किया फेडरल वर्कर्स को कि आप बिल्कुल जो है काम नहीं कर पाएगी अगर आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन बहुत सारी एजेंसीज जो हैं उन्होंने फेडरल वर्कर्स को कहा है कि इस ईमेल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्स के ऊपर जो एलॉन मस्क है उसने बोला है कि अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया तो आप फिर कहीं और करियर ढूंढो, यानी कि आपको सैक किया जाएगा। स्टारबक्स जो है जी उसने ले ऑफ किया है 1100 कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉयज है वर्ल्ड वाइड उनको, क्योंकि उनका जो नया चेयरमैन है सीईओ ब्रायन निकॉल उसने कहा जी कि हम ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि हम एलिमिनेट करेंगे हंड्रेड्स ऑफ ओपन अनफिल्ड पोजीशंस फॉर एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको हम रिड्यूस करेंगे। 16,000 कॉर्पोरेट जो सपोर्ट एम्प्लॉयज जो है इसके वर्ल्ड वाइड है। हमास के जो ऑफिशियल है बैसम नाइम उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल नतन्याहू साहब का जो इंटेंशन है वो क्लियर है, क्योंकि वो सीज फायर का जो डील है उसको बिल्कुल सबोटाज करना चाहते हैं, और उसकी वजह यह है कि सैटरडे को इन्होंने 620 पैलेस्टीनियंस को छोड़ना था जो कि नहीं छोड़ा, जबकि हमास ने जो 6 प्रॉमिस किए थे लोग उनको छोड़ा था। यूएन के जो चीफ हैं एंटोनियो गुतरस उन्होंने भी कहा है कि मुझे बड़ा ग्रेव कंसर्न है ये जो कुछ भी ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में हो रहा है, क्योंकि इसराइल कॉन्स्टेंटली कह रहा है कि इसको अनेक्स करेगा, इससे प्रॉब्लम आएंगे, और इसराइली टैंक्स जो है वो अब इधर जो रेफ्यूजी कैंप्स के पास दाखिल हो गए हैं, जिसमें कि 40,000 जो पैलेस्टीनियंस है उसको डिस्प्लेस हुए थे। जब जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और 162 अदर जो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी कह रहे हैं ईयू को कि आप बैन करें ये सारा ट्रेड और बिजनेस, क्योंकि ये ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटोरीज में बहुत ज्यादा अपना सेटलमेंट बढ़ा रहा है इसराइल, और इसराइल का जो मिलिटरी ऑफेंसिव है वो कॉन्स्टेंटली वेस्ट बैंक पे चल रहा है, हालांकि सीज फायर है, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ उन्होंने धमकी दिया है सीरियन गवर्नमेंट को भी कि आप साउथ ऑफ डमास्कस अपना कोई भी फोर्सेस नहीं रखोगे, यानी देखो जरा अपना उन्होंने मुल्क पे कहते जी नहीं आप नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा जी कि हम जो है ये एक साल तक रेफ्यूजी कैंप्स के बाहर भी हमारे फोर्सेज रहेंगे। जर्मनी के फ्रेडरिक मर्स जो हैं उन्होंने कहा है कि हम इन यूएस से इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाएंगे। इनकी एएफडी जो है उसने विन किया था अभी वीकेंड का इलेक्शंस, और उन्होंने क्योंकि कहा कि ट्रंप साहब का जो कमिटमेंट है ईयू की सिक्योरिटी पे वो हमको मालूम नहीं है, हम इतना जो है वो अश्योर्ड नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि आईसीसी कौन होता है ये बोलने वाला कि नतन्याहू को जो है वो बैन करेगा कहीं पे भी ट्रैवल करने का, क्योंकि आपको पता ही है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे आईसीसी ने कहा था कि नतन्याहू साहब जो उसको अरेस्ट किया जाए, उसका अरेस्ट वारंट इन्होंने किया था। उन्होंने कहा था हम वेज एंड फाइंड आउट करेंगे कि इनको अरेस्ट ना किया जाए, बल्कि मैं उनको इन्वाइट करूंगा कि वो यहां पे आए। आपको पता ही है कि एएफडी की जो लीडर है एलिस वीडल वो जो है उनकी जो है वो जिस तरफ लीनिंग है उसको इवन एलॉन मस्क भी बड़ा पसंद करते हैं और उसको एंडोर्स करते हैं, जिसके ऊपर यूरोप ने बड़ा शोर भी मचाया था। बहरहाल जी इसके अलावा उन्होंने फोन के ऊपर बात किया है नतन्याहू साहब से, और उन्होंने कहा जी कि हम इंश्योर करेंगे कि आप बगैर अरेस्ट के यहां से आप जाओ। इसके साथ साथ ईयू जो है इंक्लूडिंग जर्मनी जो है वो सब वैसे तो आईसीसी के सिग्नेटरीज है, और अगर आईसीसी बोलता है कि किसी को अरेस्ट करना है तो उनको करना ही है, लेकिन जर्मनी अब कह रहा है कि हम नहीं करेंगे। ईयू ने जनाब आज ये दिस इज अ बिग ब्रेकिंग न्यूज इन द वर्ल्ड टुडे कि ईयू ने आज बोला था कि हम सीरिया के ऊपर से कुछ सैंक्शंस जो हैं बड़े ही जो डेवस्टेटिंग सैंक्शंस है जो बशार अल असद के जमाने में लगाए थे फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस उनको हम उठा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहां पर डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट्स जो है वो होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि ये जो है सारे का सारा सैंक्शंस ये हम सस्पेंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑयल गैस ट्रांसपोर्ट सेक्टर और एविएशन के ऊपर, और लेकिन उन्होंने कहा कि सीरिया के ये जो भी डिफेक्टो जो लीडर्स हैं ये बिल्कुल जो है इंक्लूसिवनेस की तरफ जाएंगे और डेमोक्रेसी और रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे, तो वरना ये चीजें वापस आ सकती हैं। इसके अलावा लग्जरी गुड्स का जो एक्सपोर्ट रहेगा सीरिया में उनको भी ईज किया जा रहा है। थाउजेंड्स ऑफ लेबनीज जो थे उन्होंने जनाब हिजबुल्ला के जो लेट लीडर थे हसन नसरल्ला जिनको के मार दिया था इजरायली अटैक ने इन द सबर्ब्स ऑफ बेरूत लास्ट सितंबर में, उनका जो फ्यूनरल था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। ये जो पब्लिक फ्यूनरल था ये 1 PM लोकल टाइम संडे को हुआ था इन बेरूत्स कमिल शमून स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम के अंदर, जिसका कि कैपेसिटी 50,000 है और ये सारा भरा हुआ था। इसमें सबसे पहले पढ़ा गया एक वर्चुअली जो एड्रेस आया था उनका ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का, और इनको डेकोरेट किया गया था, और इनके जो एयर थे आशिम सैफुद्दीन, इनको भी जो मार दिया गया था इसराइल के एयर स्ट्राइक में, तो एक वीक के बाद, तो इन सबको येलो क्लोज जो कि सिंबल है हमास का, उस कलर्स के अंदर इनको लपेटा हुआ था इनके कॉफिन्स को। हिजबुल्ला के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने स्टेडियम के पिच के ऊपर भी थाउजेंड्स ऑफ सीट्स लगाए थे और स्टेडियम के बाहर भी, ताकि लोग जो है वो अपने रिस्पेक्ट्स देने के लिए आ सके। इटालियन प्रीमियर जो है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने आज बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, एंड दिस इज अगेन अ वेरी बिग डील, 40 न्यू एमओयूज उन्होंने यूएई के साथ साइन किए हैं, और जिनका के जो वैल्यू है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बोला जा रहा है। इनकी जो मीटिंग थी प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ रोम में हुई थी, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो बिजनेस फोरम है इटली यूएई का, जिसके के लिए मुलाकातें इनके हुए थे एट रोम्स पार्को डी प्रिंसिपी होटल के अंदर, तो ये बहुत जबरदस्त किस्म की जो है वो मीटिंग रही है, और हम जो है इसको और बढ़ाना चाहते हैं। यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, ही बिकेम द फर्स्ट स्टेट्समैन फ्रॉम यूएई टू विजिट यहां पे इटली में, तो उन्होंने कहा जी कि अब हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। यूके जो है उसने आज, वो भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं कार स्टॉर्मर, उन्होंने आज कहा है कि हम भी मना रहे हैं थर्ड एनिवर्सरी ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, और उसके ऊपर उन्होंने कहा है जी कि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तुर्की है, थाईलैंड, चाइना और इंडिया जो है, जो बहुत ज्यादा इनसे सामान खरीदता है या सप्लाई करता है रशिया को, उन सबके ऊपर जो है अब हम सैंक्शंस लगाएंगे। तो इसके लिए अब जाहिर है कि इन कंट्रीज में, खासतौर पर इंडिया में, बहुत ज्यादा कंसर्न आया है। आपको बताइए कि ज़ेलेंस्की साहब, अभी मैंने आपको बताया कि वो एक होस्ट कर रहे हैं समिट, तो उसके अंदर ये सारे लीडर्स आए हुए हैं, और उन्होंने कहा जी कि अभी मेरे टॉक्स भी होने वाले हैं ट्रंप साहब के साथ डीसी के अंदर थर्सडे को, तो मैं उनके साथ यूक्रेन का बात करूंगा, और जो रशिया है उसके पास सारे कार्ड्स नहीं है, क्योंकि उसका अपना खुद का इकोनॉमी बहुत अब मुसीबत में आ गया है, तो वहां पर हमको यूक्रेन में खाली एंड्योरिंग पीस नहीं लाना बल्कि ये फाइटिंग को भी रोकना है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने किया है मैक्रॉन साहब को, मैक्रॉन साहब एज वी स्पीक उनकी मुलाकातें जो हैं ट्रंप साहब के साथ हो रही है, तो उन्होंने कहा जी कि हम भी बात करेंगे, आप भी बात करो, तो मैक्रॉन साहब ने भी व्हाइट हाउस में यूक्रेन के मुद्दे पे बात किया है ट्रंप साहब के साथ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं जी, उनका मुलाकातें जो है अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम आयेव के साथ हुए हैं, और बहुत सारे बेशुमार एमओयूज जो है इन्होंने साइन किए हैं, और इसमें इन्होंने कहा है जी कि अजरबैजान इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में $2 बिलियन इन डिफरेंट वेंचर्स इन टूरिज्म, एनर्जी, एजुकेशन एंड अदर ट्रेड। इसके ऊपर आलियाव साहब ने बात करते हुए कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि आज तक हमने पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं किया और हमने अपनी दोस्ती को आगे नहीं बढ़ाया है, तो अभी हम इसको और आगे लेके जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरन मिनिस्टर इसहाक डार और भी बहुत सारे दूसरे फेडरल मिनिस्टर जो थे उनके साथ थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इनकी तो किसी को समझ नहीं आ रही है। एक दिन कहते हैं मिलिटरी कोर्ट्स में हो सकता है सिविलियंस का ना ट्रायल, और दूसरी दफा कहते हैं नहीं। आज फिर इन्होंने कहा जी कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है कि आर्मी एक्ट जो है वो रिलेट करता है आर्म्ड फोर्सेस के साथ, तो इसलिए जो है वो सिविलियंस को इसके ऊपर कैसे ट्राई करेंगे। वो कहते हैं जी ये लेजिस्लेशन जो है वो बिल्कुल क्लियरली बोलता है कि ये मिलिट्री ट्रायल्स मिलिट्री के लोगों पे चलेंगे। इसकी वजह ये है कि इन्होंने ये बात उस वक्त की जब उजैर भंडारी जो कि लॉयर है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इमरान खान को, उसने कहा जी कि ये आर्मी एक्ट जो है इसको एनॉल भी कर दिया, यानी कि खत्म भी कर दिया जाए, और एंटी टेररिज्म जो लॉ है वो इन प्लेस रहेगा, और मल्टीपल लीगल फोरम्स जो हैं वो होते हैं, लेकिन हमको अब ये डिटर्मिन करना पड़ेगा कि जो एक्यूज होता है उसका फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो और उसको एंश्योर किया जाए। उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल जुडिशियल पावर्स नहीं ग्रांट करता है टू आर्मी, तो इसलिए सिविलियंस का केस जो है वो सिविल कोर्ट में ही चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जो हैं अख्तर हुसैन, उन्होंने आज रिजाइन किया एज पाकिस्तान जुडिशियल कमीशन मेंबर। उन्होंने कहा जी कि ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसके ऊपर लोगों के बहुत सारे ग्रेव कंसर्न हैं। उन्होंने कहा जी कि रेजिग्नेशन मैंने जेसीपी के चेयरमैन को भी भेजा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी को भी भेजा है। उन्होंने कहा जी कि मुझे पाकिस्तान बार काउंसिल ने 3 दफा जो है वो नॉमिनेट किया, लेकिन अपने लेटर में उन्होंने कहा जी कि बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने जब तक मैं वहां रहा अपने बेस्ट एबिलिटीज के थ्रू मैं निभाता रहा, लेकिन अब चूंकि बहुत सारा कंट्रोवर्सी आ गया इसमें तो मैं अपना जुडिशियल जो है वो काम नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूं। तो आप कोई भी नया आदमी यानी कि नया जस्टिस आप नॉमिनेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। टेक्निकल मिशन ऑफ आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान में पहुंचा है टू होल्ड टॉक्स ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग इन थ्री डे स्टे. फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने आज ये मीडिया को बोला. उन्होंने कहा जी कि आईएमएफ का जो टीम यहां पे नेक्स्ट मंथ में आने वाला है वो डिस्कस करेगा $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी. और जो है ये बातें उन्होंने उस वक्त की है जिस वक्त के आईएमएफ के रेजिडेंट चीफ जो है माहिर बनीची, उन्होंने कहा कि मिशन जो है वो दो मिशन आ रहे हैं इस्लामाबाद में. एक तो डेलीगेशन जो आएगा वो फोकस करेगा एड के ऊपर अंडर रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी अरेंजमेंट, और सेकेंड वाला जो है वो पाकिस्तान का देखेगा लेटेस्ट बेल आउट प्लान. पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जो है उसने बोला है जी कि हमने वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स को लाइसेंसिंग देने शुरू कर दिए हैं अंडर क्लास लाइसेंस टू एंश्योर लेजिटिमेट यूज ऑफ प्राइवेट इंटरनेट गेटवेज. और उन्होंने कहा जी कि दो जो फर्म्स हैं उनका एप्लीकेशन जो है हमने किया है फॉर वीपीएन सर्विसेज को प्रोवाइड किया है हमने, तो वो देंगे. और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये इनिशिएटिव जो है ये हेल्प करेगा बिजनेसेस को टू यूटिलाइज वीपीएन इन अ लॉफुल मैनर और अपना डेटा का सिक्योरिटी भी करेंगे, प्राइवेसी और रेगुलेशन कंप्लायंस भी रहेगी और ट्रांसपेरेंसी भी इसमें रहेगी. पावर डिवीजन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा जी कि फेडरल गवर्नमेंट का जो एफर्ट है टू रिड्यूस स्काई रॉकेटिंग पावर टैरिफ, तो इसमें 6 to 8 रुपीज पर यूनिट का कमी आ सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो बहुत आपको पता ही है कि पैड़ा आप कह सकते हैं कि टॉपिक है और गवर्नमेंट को काफी इस पर बैशिंग मिलता है. तो वो कहते हैं जी कि ये क्या आपकी अग्रीमेंट्स है आईपीपी के साथ और ये क्यों इतना महंगी है जो बिजली है. फेडरल सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी जो है डॉक्टर मोहम्मद फखरे आलम इरफान, उन्होंने सेनेट के स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि गवर्नमेंट बिल्कुल इस पर काम कर रहे हैं कि रिड्यूस किया जाए ये जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आईएमएफ का अप्रूवल आना बहुत लाजिम है. ये जो टॉक्स कर रहे थे आईपीपी के साथ उसमें उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट ने सेव किया है 700 बिलियन रूपीज और इसमें उन्होंने इंक्लूडिंग रिमूविंग 300 बिलियन इन इंटरेस्ट पेमेंट्स और 6 आईपीपीज जो है उनको खत्म किया गया है और 25 दूसरे जो है उनको हम इस बेस पे बात कर रहे हैं कि टेक एंड पे मॉडल आप चलेंगे, यानी कि जितना जो लेगा आपसे बिजली उतना वो पे करेगा. ऐसा नहीं है कि नहीं भी ले रहे हैं तो भी आप उसके ऊपर वो जो है वो खर्चा डाले जा रहे हो. मोदी जी जो हैं आज इंडिया में उन्होंने बहुत ज्यादा अटैक किया आरजेडी की डी के जो पेट्रन इन चीफ हैं लालू प्रसाद यादव, और उनको जो है बड़ा हिट किया फॉर फॉर्डर स्कैम. और उन्होंने कहा जी कि लालू प्रसाद का नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे इनका इसके बारे में क्या कहना है, ये बार बार मुझे कह रहे हैं कि जी फार्मर का कंडीशन अंडर एनडीए क्या है, आप मुझे बताओ कि आप वो क्या वो घास फूस और वो सारा कुछ खा सकते हैं जो आप एनिमल्स को देते हैं, तो आप तो वो नहीं कर सकते हैं तो आप फार्मर्स का कंडीशन कैसे चेंज करेंगे. वाह 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 क्या मतलब है क्या दी एनालॉजी दी है, वाह 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 क्या बात है मोदी जी आपकी, आप तो सही है, आप सिर्फ ट्रंप साहब के सामने जो है ना झुक सकते हैं और किसी के सामने नहीं. बहुत 48 इंच का छाती है आपका, गुड. अच्छा जी उन्होंने कहा जी कि 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ऊपर बात कर रहे थे, इसके ऊपर आरजेडी जो है वो तो बड़ा भड़क गई. उसके एमपी जो है मनोज झा उसने कहा कि मोदी जी हमेशा अपना आइडियोलॉजी और लैंग्वेज भूल जाते हैं जिस वक्त भी इलेक्शन पास आने वाले होते हैं. अपनी हिस्ट्री के ऊपर देखो, फार्मर्स का जो प्रॉब्लम बिहार के अंदर है वो रेस्ट ऑफ द कंट्री से बहुत डिफरेंट है. अगर आपको ग्राउंड रियलिटीज जानना है तो आप ग्राउंड रियलिटीज जानने के लिए आपको जमीन पे आना पड़ेगा और बिहार को स्पेशल स्टेटस बनाना पड़ेगा, फिर ही आपका इंटेंशन नजर आएगा कि आप बिहार के फार्मर्स के साथ क्या करना चाहते हैं. अच्छा जनाब हमने आपको वीकेंड में बताया था कि ना तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट ना तो किसी और अदारे से यह माना जा रहा था कि जी $21 मिलियन का जो आया था यूएस एड का सारा एड वो बीजेपी ने यूज किया, बल्कि मियां ने कहा कि जी ये तो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि यह तो सारा बांग्लादेश के लिए था, लेकिन ऑपोजिशन कॉन्स्टेंटली बीजेपी के ऊपर एतराज कर रही थी. अभी कैट इज आउट ऑफ द बैग, ये ट्रंप साहब ने खुद ही जरा डिटेल्स खोल दिया है. अभी ट्रंप साहब ने कहा जी कि 21 मिलियन जो यूएस एड था दैट वेंट टू माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया, वाह फॉर वोटर टर्न आउट. ट्रंप साहब जो थे वो गवर्नर्स वर्किंग एसोसिएशन का मीटिंग जो था उसके अंदर बैठे हुए थे और बता रहे थे कि हम कहां कहां से स्पेंडिंग का कट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी ये एक लहराया इमरान खान की तरफ व्हाइट लेटर. उन्होंने कहा जी ये मेरे पास पूरा लिस्ट आया है कि हम किस किस को क्या देते हैं. तो उन्होंने कहा जी हम एड देते हैं युगेंडा को, मोजाम्बिक को, सर्बिया को, 486 मिलियन टू इलेक्शन एंड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथिंग कंसोर्टियम को हमने दिया था, 22 मिलियन मोल्डोवा को दिया और 21 मिलियन जो है मेरे दोस्त मोदी जी को दिया गया. तो अब मुझे बताओ कि ये अगर वोटर टर्नआउट पे यूज कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए जो है ये पैसा हमारे पास होना चाहिए। ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किसी का नाम लिया है फंडिंग के में, और इसीलिए फिर ऑपोजिशन जो है हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा भड़क गई। उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन तो बिठाना बनता है। वैसे तो उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब की बातों का हमको कुछ इतना यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी ये एलिगेशन जो है ये बहुत ज्यादा सख्त है। मैंने तो आपको बताया था कि ये 21 मिलियन जो यूएस डॉलर है टोटल 200 करोड़ बनता है। अरे 200 करोड़ क्या है, हाथ की मैल है इंडिया के किसी छोटे से छोटे बिजनेसमैन के लिए भी। आपको मैंने बताया था कितना कितना लोग वहां पे जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद के अपने इंडियन जो बिजनेसमैन है 5,000 करोड़ का धारवी का डेवलपमेंट चला रहे हैं अदानी, पता नहीं कितने बिलियन ऑफ, पता नहीं 60 बिलियन के क्या का उन्होंने ऑफर किया था मोदी जी को कि इंडिया के सारे पोर्ट्स मुझे दे दो मैनेज करने के लिए। 50,000 करोड़ जो मुकेश अंबानी जी है उसने ऑलरेडी वेस्ट बैंक में जो है इन्वेस्ट किया और कह रहे हैं और 50,000 करोड़, तो ये 200 करोड़ क्या है, ये लेना भी नहीं चाहिए था हिंदुस्तान को। अरे क्या मतलब चिंदी चोरी, वाई फॉर दिस है। 500 करोड़ का तो आपका भी मूवी बनता है, 500 करोड़ से 1,000 करोड़ का तो अभी हिंदुस्तान के लिए। अच्छा जनाब, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित नैने और करिश्मा कपूर का जो एक फिल्म आई थी पहले बहुत जबरदस्त दिल तो पागल है, उसको फिर से री रिलीज किया जा रहा है। यश राज फिल्म्स ने बोला कि इट विल हिट थिएटर्स ऑन February 28th। फिल्म मेकर रवि चोपड़ा के जो बीवी हैं प्रोड्यूसर रेनू चोपड़ा, उन्होंने शाहरुख खान का बहुत तारीफ किया और उनके जेनरोसिटी का भी। उन्होंने कहा कि मेरे जब हस्बैंड का डेथ हुआ तो मैंने उनको कहा कि मेरा बेटा अभय चोपड़ा जो है एक अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाला है इत्तेफाक के साथ, तो आप, मेरे पास पैसा नहीं है उसके मूवी बनाने के लिए, तो शाहरुख ने कहा मैं उसका पैसा दूंगा, तो मैंने कहा आप उसका स्टोरी तो पढ़ लें। उन्होंने कहा मुझे स्टोरी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई नेवर बैक द हॉर्स आई ऑलवेज बैक द जॉकी। तो फिर उनके रेनू ने कहा, मैंने उनको बोला कि जो प्रॉफिट आएगा आप ले लेना उसमें से, तो शाहरुख खान ने बोला कि मैं प्रॉफिट भी नहीं लूंगा, एक फ्रेंड के दोस्त बच्चे की मैं हेल्प कर रहा हूं, ये पैसा मेरे लिए हराम रहेगा तो इसलिए मैं नहीं रहूंगा। ये स्टार सैलरीज जो है आपको मालूम ही है बॉलीवुड में बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं, तो इसके अंदर एक प्रॉफिट शेयरिंग का मॉडल जो है वो ऑप्शन लेकर आए हैं आमिर खान। आमिर खान से भी रिसेंटली एक इंटरव्यू किया तो उनसे पूछा कि भई आप फिल्म का कितना जो है वो लेते हैं, उसका जो आपका जो फीस होता है वो कितना होता है। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल फीस वीस नहीं लेता, इसीलिए मेरी फिल्म जो है 10 से 20 करोड़ के बीच में बन जाती है और मुझे पता है कि मेरी फिल्म इतना तो रिकूप कर ही सकती है, तो मैं जो है बिलीव करता हूं प्रॉफिट शेयरिंग पे, तो मूवी जितना प्रॉफिट करती है तो फिर उस पे मैं पैसे ले लेता हूं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट क्लब ने कहा है कि अभी वो प्लान कर रहा है टू रिज्यूम प्लेइंग 5 मैच टेस्ट सीरीज टू रिवाइव दिस फॉर्मेट। यूके के मीडिया में ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं। पहले तो वो कह रहे हैं जी कि बिग थ्री जो है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया जो है अर्ली 2008 के समर में हम खेलेंगे, फिर पाक और साउथ अफ्रीका जो है यानी कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका को भी इन्वाइट किया जा सकता है फॉर फुल फ्लेज सीरीज इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। आज जो 6th मैच था चैंपियंस ट्रॉफी का उसमें न्यूजीलैंड ने डिफीट किया बांग्लादेश को एट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम बाय 5 विकेट्स। बांग्लादेश और पाकिस्तान एज अ रिजल्ट जो है वो सेमीफाइनल से आउट है। न्यूजीलैंड के रविंद्रा जो है उसने 112 रन बनाए जबकि उसकी साइड को 237 रन ही चाहिए थे, फिर भी बांग्ला के बॉलर्स ने पहले तो डोमिनेट किया और उन्हें डिसमिस किया केन विलियमसन को 5 पे और विल यंग को 0 के ऊपर, और इससे पहले उन्होंने 237 जो थे वो रन बनाए थे तो उनको लग रहा था कि वो डिफेंड कर पाएंगे, लेकिन नजमुल हसन शांतो की 77 रन की इनिंग्स बिल्कुल गारत हुई और जो जाकर अली का भी रेजिस्टेंस था वो बिल्कुल खराब हो गया, और जो है कैप्टन मिशेल स्टैटनर जो थे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम पहले बॉलिंग करेंगे तो उस डिसीजन ने पे किया। और जनाब अभी जिस गेम के ऊपर हम बात अभी डिटेल में करेंगे अपने जो हमारे गेस्ट हैं रशपाल बाजवा साहब, लेकिन हम आपको बता दें कि जो इंडिया पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का वीकेंड पे मैच था उस पर बहुत ज्यादा बैशिंग आया है सीनियर प्लेयर्स का। वकार यूनुस ने बहुत ज्यादा लैश किया पाकिस्तान टीम को जो दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मैच हुआ। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने सिर्फ 241 रन बनाए थे और उसके ऊपर इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान अभी भी इज स्टक इन द 80s और वो इस स्टोरी पे चलते हैं कि जी हम तो 5 की स्पीड पे चल रहेंगे और हमारे आने वाले जो है पीछे वो 8 और 9 के जो है स्पीड पे रन बनाएंगे पर ओवर, और रिजवान और साउथ शकील ने एग्जैक्टली यही किया। तो ये अब ऐसा नहीं होता है, आपको ये कोई कंसिस्टेंसी नहीं है किसी लेवल पे, आपका चेयरमैनशिप सिलेक्टर्स कोचेस सबको ब्लेम जाता है। मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसा ज्यादा नहीं खेला जाता है, आपको रन रेट पहले ओवर से ही तेज बनाना पड़ेगा, तभी आप कम बैक करते हैं, दूसरे टीम्स जो है, वरना आपको जो अच्छे टीम्स होते हैं आपको बाउंस बैक करने का मौका नहीं देते हैं। इंजमाम उलग जो है उसने कहा जी कि हमारा तो अभी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है पाकिस्तान टीम का, आप तो अभी होस्ट और पहले राउंड में ही आपको नॉकआउट कर दिया गया, जरा जरा हमारे पे प्रेशर आता है तो आप कंप्लीटली क्लैप्स कर जाते हैं। अबरार को देखो जरा, 10 ओवर में 28 रन खाली उसने दिया, तो आपने सिर्फ इस पिच के लिए एक ही स्पिनर को क्यों जो है वो सिलेक्ट किया, आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन क्यों नहीं था, इसको मिस्टेक नहीं बोलते हैं, इसको ब्लंडर बोलते हैं, और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ऐसा खेलने का एक रेगुलर स्पिनर के साथ, जब आप ऐसा करेंगे सब कॉन्टिनेंट के कंडीशंस पे तो हारना तो था ही आपने। मोहम्मद हफीज ने कहा जी कि बाबर आजम किंग नहीं है, कोहली किंग है, बिल्कुल मैं भी मानती हूं जनाब, वाह क्या गेम की कोहली ने। वो कहते हैं जी उसका परफॉर्मेंस देखो, और ये जो आपका बहुत सारे प्लेयर्स का पीआर मशीनरी चल रहा है इसको बंद करने की जरूरत है, आपको अपने परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान करो। शाहीन शाह अफरीदी, नईम शाह, हारिस रऊफ बिल्कुल 2023 एशिया कप में भी फेल हुए थे, 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी फेल हुए थे, T20 वर्ल्ड कप में और अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी, उनका टैलेंट तो उनके पास बहुत है लेकिन वो बिल्कुल ये केपेबल नहीं है कि बड़े टूर्नामेंट्स को पाकिस्तान के लिए जिता सकते हैं। आपको अब देना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी दूसरे बॉलर्स को लाइक मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद वसीम जूनियर, आकिफ जावेद और मीर हमजा को। और जनाब वसीम अकरम भी बहुत ज्यादा भड़के हुए नजर आए, उन्होंने कहा हमको बहुत ज्यादा ड्रास्टिक स्टेप लेने का जरूरत है, ये जो पुरानी किस्म की क्रिकेट हम खेलते थे व्हाइट बॉल की सदियों से, इसको चेंज करने का जरूरत है और ये चेंज जो है बहुत ड्रास्टिक हो सकती है, लेकिन इसमें फियरलेस क्रिकेटर्स को लाएं, यंग ब्लड को टीम में लाएं, इसमें अगर आपको 5 से 6 चेंजेस भी करने पड़ते हैं तो आप करें, अगले 6 महीने के लिए अगर आप हारते भी हैं टीम से तो भी हारे, लेकिन एक टीम बिल्ड करें फॉर T20 वर्ल्ड कप 2026 अभी से ही। और इसके अलावा उन्होंने जो पाकिस्तानी बोलर्स थे उनको भी बहुत ज्यादा उस पर एतराज किया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का जो ODI क्रिकेट का बोलिंग एवरेज है दैट इज द सेकेंड वर्स्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है जी,
जनाब हम 2 कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, हाँ। और उसके बाद जो है हम अपने गेस्ट के साथ, हमारी पर टेक्निकल टीम ने कहा है कि हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं तो टाइम जाए किए बगैर
हम उनके साथ
गेस्ट को जो है वो शामिल करते हैं। शाह जी इंट्रोडक्शन कराइए गेस्ट का।
हेलो जी रशपाल साहब, कैसे हो आप?
मैं एकदम बढ़िया हूँ जी, देर के बाद मिला हूँ, बट वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग टुनाइट।
जी जी बिल्कुल सर, हम तो आपको बहुत याद कर रहे थे, अगर आप गायब हो जाते हैं बीच से तो हमने, हमारे लोगों ने भी बहुत ज्यादा आपको मिस किया। तो हम आपको बता दें जी, रशपाल बाजवा साहब, ही वॉज द फॉर्मर जो क्रिकेट कैनेडा है उनके प्रेसिडेंट हैं, एंड ही हैज बीन एक्सट्रीमली काइंड, और हमेशा जब भी हम इनको बुलाते हैं वो आ जाते हैं, तो आज भी हमने, अच्छा सर आज का तो जो डिस्कशन है वो तो संडे के फायरवर्क से शुरू होगा, तो जरा अपनी टिप्पणी दीजिए उस पर।
देखिए जी, मेरी ये जैसे मैंने कुछ टीवी शोज भी देख रहा था कि भाई अजय जडेजा ने बोला कि ये गेम में बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, और डिसअपॉइंटिंग इन द सेंस कि भाई हम जब इंडिया पाकिस्तान की गेम के लिए पूरी रात जाग के देखते हैं, हमको ये नहीं होता कि इंडिया जीते या पाकिस्तान, पर गेम टक्कर की होनी चाहिए, इस पर गेम भी टक्कर की नहीं थी, सो यू नो डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई जो गेम है वो गेम इंडिया जीत गई चलो ठीक है, बट आपको एज ए स्पेक्टेटर, क्योंकि मैं तो क्रिकेट में अच्छी तरह इन्वॉल्व हूं, तो आपको चाहते हो कि भी एक अच्छी सी गेम हो, दोनों टीम अखीरले ओवर तक गेम जाए, और ये गेम तो बहुत जल्दी खत्म हो गई थी।
जी बिल्कुल सर, तो मेरी जो प्रिडिक्शन थी ना, ये जो आपके दोस्त बैठे हैं ना आमिर साहब की दोनों प्रिडिक्शंस वीकेंड पे गलत हुई, मैंने कहा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, आमिर ने कहा इंग्लैंड, मैंने कहा इंडिया पाकिस्तान में इंडिया जीतेगा, आमिर ने कहा पाकिस्तान, तो अभी ये मेरे से शर्त हार गया लेकिन मुझे पैसे नहीं दे रहा ये। अच्छा तो वो पेपर पे असल में जो थी सर बहुत ज्यादा ऑलरेडी भी स्ट्रांग लग रही थी, और ये दुबई के कंडीशंस पे वो बहुत सारे स्पिनर्स के साथ खेल रहे थे जिन्होंने के डिलीवर भी किया, हमारे पास तो एक भी कोई रिस्ट स्पिनर नहीं था सिवाय एक वो रेगुलर स्पिनर, एक वो जो अबरार था, तो आपको क्या लग रहा है कि सिलेक्शन में कहीं ना कहीं झोल था पाकिस्तान का टीम का?
डेफिनेटली जी, मेरे ख्याल से इंडियन टीम की जो टीम कॉम्पोजिशन था वो बहुत टूर्नामेंट और सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस और दुबई की कंडीशन सब कुछ देख दाख के किया गया था, वेरस पाकिस्तान की टीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई ना तो आपने ओपनर्स लिए और ना ही आपने एक स्पिनर, यू नो पार्ट टाइम स्पिनर के साथ, आजकल अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इमेजिन करिए कि अगर उसके साथ एक और अच्छा स्पिनर होता, आपके पास 2 पार्ट टाइम स्पिनर है, आपको एक और स्पिनर तो मिनिमम मेरिट अब बड़े बड़े एक्सपोर्ट तो कहते हैं कि इंडिया 3 लेके चला था, आपको भी 3 लेके चलना चाहिए था, बट एटलीस्ट मिनिमम एक और स्पिनर तो होना चाहिए था। और ओपनर्स, आप बाबर को ऊपर भेज के ना आपके पास प्रॉपर ओपनर है। सो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जब टीम चूज की है तो टीम कॉम्पोजिशन को अच्छी तरह देखा नहीं। अच्छे प्लेयर जरूर लड़के, मेरे को इतना डोमेस्टिक में फॉलो नहीं करता हूं पाकिस्तान का, तो मुझे मालूम नहीं कि ये लड़के परफॉर्म कैसा कर रहे थे डोमेस्टिक में, बट सेलेक्टर्स ने अगर परफॉर्मेंस के बेस पे भी लिया तो कॉम्पोजिशन को नहीं देखा कि भाई स्पिनर नहीं है, ओपनर्स नहीं है। अब आपके फकर जमान जो है इतने इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, वो इंजर्ड हो गए तो उनके इम्पैक्ट जितना आप ओपनर भी नहीं ला सके। इमाम ठीक है, ओपनिंग करता है, बट ये है कि भी आपने जो टीम कॉम्पोजिशन जो सिलेक्शन हुई है, मेरे हिसाब से दे हैव टू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। और मेरे को पाकिस्तान बोर्ड से एक ही रिक्वेस्ट है, आप जो भी लड़के लीजिए, आप जिनको भी करिए, उनको थोड़ा सा मौका देके ग्रूम करके ट्रेन करके, ये नहीं कि अब एक टूर्नामेंट में लेके अगले टूर्नामेंट में निकाल के फिर नयों को लेके आ जाए। सो आई थिंक देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, की भी 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए अब से तैयारी होनी चाहिए और लड़कों को मौका मिले सो दैट कि वो उस बिग टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर सकें। सो आई होप पाकिस्तान बोर्ड इज लिसनिंग टू ऑल द एक्सपर्ट्स। मैं तो देख रहा था कि वसीम अकरम, जैसे आप अपने टूर्नामेंट अपने आप भी बता रहे थे, वसीम अकरम, इंजमामुल हक, आकिब जावेद और सारे सभी ने बोला है, एंड आई थिंक दे शुड पे सम अटेंशन टू दैट कमेंट्स व्हाट दीज गाइस आर सेइंग।
जी बिल्कुल, ये जो आप अजय साहब का बता रहे थे, बयान दे रहे थे, सर ये 10 स्पोर्ट्स पे बैठे हुए थे ये सारे, अजय साहब थे उनके साथ और वो वसीम अकरम थे और वकार यूनुस थे, तो ये लोग वहां पे फखर के साथ वो डिस्कशन सारा चल रहा था। तो यही बात आपने जो की है वही उसने वसीम अकरम ने भी किया कि भाई अब आपको न्यू ब्लड लेकर आना पड़ेगा, उनको थोड़ा ग्रूम करो, हारेंगे भी तो कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड हैव वो। अच्छा हाँ जी बिल्कुल, सिलेक्शन का तो आपने बिल्कुल कहा, उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल थे। आपको पता ही है रिशपाल साहब कि पाकिस्तान का स्ट्रेंथ हमेशा से बोलिंग उसका रहा है, तो ये लड़के जो हैं इनका स्पीड दिन ब दिन नीचे नहीं आता जा रहा है? ये जो शाहीन शाह अफरीदी है और नसीम शाह है, कुछ ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और एक ही तरह का बोलिंग कर रहे हैं और इतने प्रिडिक्टेबल हो गए हैं कि वो इंडियन बैट्समैन जान जाता था कि ये अभी क्या करेंगे, क्या कहते हैं आप?
एब्सोल्युटली आपने सही बोला कि प्रिडिक्टेबल हो गए।
हाँ।
आप देख लीजिए कि भी शुरू के ओवर में शुभमन आगे बढ़ बढ़ के अपना शाहीन को मार रहा है, तो उससे आपको पता है, और उसके बाद शाहीन ने कुछ चेंज भी नहीं किया, ये नहीं कि भी थोड़ी शॉर्ट बॉल करे, उसको क्रीज के अंदर भेजे वापस। आई थिंक प्रिडिक्टेबिलिटी कि भाई वो एक ही डायमेंशन पे बॉलिंग कर रहे हैं, और T20 में चल जाती है कि भाई 4 ओवर होते हैं जिस तरह से, आई थिंक लॉन्गर फॉर्मेट में आपको अपनी पूरी वेरिएशन यूज करनी चाहिए। और शाहीन मेरे ख्याल से इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, बट इस टूर्नामेंट में जो उसने बॉलिंग की है उसमें ऐसा लगा कि जैसे वो बात नहीं है। एक रोहित की विकेट जरूर उसने अच्छी ली, सेम इन स्विंगिंग यॉर्कर, और बहुत
एक ही बॉल अच्छी थी उसकी सारे टूर्नामेंट में।
सही बात है जी। उसके बाद उसने जब शुभमन उसको आगे बढ़ के मार रहा है और ड्राइव कर रहा है, तो आपने एक शॉर्ट बॉल ही देखी उससे, और ही इज द लीडर क्योंकि वो आपका सबसे मेन बॉलर है, उसको फॉलो करेंगे नसीम और हैरिस राउफ। और मेरे ख्याल से आपकी बात एकदम सही है कि वो बड़ी प्रिडिक्टेबल बॉलिंग की, और प्रिडिक्टेबल, और ये टूर्नामेंट जो दुबई में हो रहा है स्पिनर्स ने गेम फंसानी है, फास्ट बॉलर्स का तो शुरू में ओवर जो पहला पावर प्ले है उसमें सभी को पड़ती है, और देखते हैं कि भी कौन सा फास्ट बॉलर ओवर आपके ना पावर प्ले में रन कम देगा, वो टीम ऑलवेज एडवांटेज में होगी। और इंडिया के बॉलर्स को शमी को भी पड़ी शुरू में, बढ़िया है कि भी दूसरा जो लड़का था राणा, जो नया लड़का है, उसने बॉल में वेरिएशन काफी की, कभी स्लोअर डाल दी, कभी ऊपर डाल दी, कभी पीछे डाल दी। सो आई थिंक दे हैव टू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, एंड मेरे ख्याल से कोचिंग स्टाफ हैज टू पिक अप देयर सॉक्स टू, कि भाई आप क्या बता रहे हैं उनको कि भी कोचिंग कि भी क्या करना है, गेम प्लान क्या था, कोई आपने प्लान बनाया नहीं। आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट पाकिस्तान पीपल आर गोना आस्क द बोर्ड, एंड आई थिंक बोर्ड शुड बी वेरी सीरियस अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेट ऊपर रहना बहुत जरूरी है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए।
जी सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप देखें ना कि 241 का जो है वो टोटल आपने सेव करना है, और 70 रन अगर आप दे देंगे ऐसे बॉलर भी जो आपके प्रीमियम बॉलर है तो कैसे चलेगा। यादव को देखें कितनी जबरदस्त उसने बॉलिंग की है। अच्छा सर, जो विराट कोहली ने कमाल दिखाया है, तो पाकिस्तान में भी लोगों ने कहा कि किंग तो विराट ही है, किंग कोहली है, तो इस एज में और इतने बुरे पैच के बाद ही एक्चुअली केम फ्रॉम द बैक एंड ही शोड हिज क्लास. तो क्या बोलना चाहते हैं आप उसके परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि कोहली तो मेरा भी बड़ा फेवरेट जो है वो प्लेयर है.
देखो जी, कोहली कोहली है एंड ही इज द रियल किंग. लोग जो मर्जी कहते रहे, क्योंकि उस बंदे ने स्टैंडर्ड ही इतना हाई कर दिया है अपना कि लोग कहते हैं ये फेलियर है. आप अगर स्टैट्स उठा के देखेंगे 2022 से लेके अभी तक मेरे ख्याल से 12 सेंचुरी मार चुका है, बट फिर भी कहते हैं कि भी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसका स्टैंडर्ड काफी हाई है. एंड द वे ही केम बैक, ऑब्वियसली थोड़ा सा पैच बुरा चल रहा था कि भी ओडीआई में स्कोर नहीं किया अभी रिसेंटली, बट देन अगेन इट शोज कि भी जो बड़ी गेमें होती हैं उसमें बड़े प्लेयर उभर के आते हैं. और विराट कोहली ने फिर से दिखा दिया कि भी इतनी बुरी फॉर्म के बावजूद पाकिस्तान इंडिया जो कि नंबर वन गेम पूरे चैंपियंस ट्रॉफी की या किसी भी टूर्नामेंट की होती है उसमें ही स्टेप्ड अप एंड यू नो प्रेशर कोई फर्क नहीं पड़ा कि उठ के सेंचुरी मार दी. ऐसा लगा जैसे कि भी बड़ी तगड़ी फॉर्म में है. सो हैट्स ऑफ टू हिम एंड आई एम हैप्पी दैट ही इज बैक इन फॉर्म एंड नाउ पाकिस्तान इज नॉट देयर. सो आई थिंक ऑल द पाकिस्तानी पीपल एंड they should back up Virat Kohli to go and win another championship before he retires.
हाँ जी बिल्कुल, चैंपियनशिप जीतेगा नहीं लेकिन कोहली को अच्छा सर परफॉर्म करना चाहिए. कोहली के साथ हमारा बड़ा प्यार है. अच्छा सर, वो आपको पता ही होगा, वो कोहली के बारे में बता रहे थे, वही बिल्कुल आप वाली बात कि हंगर उसके अंदर इतना है कि जब टीम इंडिया ने आना था ट्रेनिंग करने के लिए भी फील्ड में, 2 घंटे पहले से वो पहुंचा हुआ था और 2 घंटे पहले से वो टीम से भी पहले जो है वो उधर कर रहा था जो है वो, तो ये शो करता है. अच्छा सर, आपसे मैं एक और बात पूछना चाह रही हूं कि ये जो अभी टीम का जो कॉम्बिनेशंस अब बन गए हैं, नजर आ रहे हैं जैसे कि न्यूजीलैंड और इंडिया आ जाएंगे एक तरफ से और दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और तो ये आपको क्या लग रहा है कि साउथ अफ्रीका आ जाएगा, तो इनमें से फाइनल कौन खेलेगा? मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया खेलेगा, आपको क्या लग रहा है?
मेरी प्रेडिक्शन इस बार बड़ी मैं शुरू से साउथ अफ्रीका के साथ चल रहा हूँ.
अच्छा अच्छा.
मुझे है कि भी एक बारी हर बारी हम इनको चोकर कहते हैं और अच्छी फॉर्म में है. टीम पूरी इकट्ठी हो गई है, पहली गेम भी अच्छी खेली है, अब उनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ गेम है, देखते हैं कैसा खेलते हैं. और मैं बड़ा देखो आपके चैनल वाले भी और सारे की भी मेरे ख्याल से इस बारी मेरी प्रेडिक्शन जो है साउथ अफ्रीका फाइनल में होगा. उसके साथ कौन होगा ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट साउथ अफ्रीका फाइनल में जरूर होगा. मैं इंडिया को भी नहीं कहता कि भी वो फाइनल में पहुंचे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, आपने बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में है, मेरे को लगता है कि हो सकता है वो सेमीफाइनल में भी ना पहुंचे, क्योंकि एक गेम जीते हैं वो इंग्लैंड से, बट ये है कि भाई साउथ अफ्रीका के साथ कैसी गेम, क्योंकि उनकी बॉलिंग जो उनकी जो बॉलिंग पैक है ना, बॉलिंग वीक है उनकी, क्योंकि तीनों बॉलर नहीं खेल रहे, उनके स्टार केजल और कमिंस. सो अभी तक तो इंग्लैंड के साथ खेले हैं कि भी इंग्लैंड की टीम जो है इंडिया से पहले मार खा के आ रही थी और बट फिर भी 350 रन कर दिए उनकी बॉलिंग के ऊपर. सो अच्छी बड़ी टीमें जो है वो उससे ज्यादा भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं. सो मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है इस समय वीक है. सो ऑस्ट्रेलिया मेरी फेवरेट नहीं है, यूजली ये टूर्नामेंट्स में काफी हरदम ही कुछ ना कुछ कर जाते हैं. आई थिंक न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका विल बी द फाइनल एंड साउथ अफ्रीका विंस द फाइनल. सो मेरी प्रेडिक्शन है.
अच्छा अच्छा. हाँ सर, वो न्यूजीलैंड भी पेपर के ऊपर तो बड़ी स्ट्रांग टीम लग रही है. अच्छा मूविंग,
अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं.
जी 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 जी, बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं सर. 3 मैच तो पाकिस्तान को ही हरा दिए हैं उन्होंने, बैक टू बैक जो है, ट्राई सीरीज पे आए थे और फिर उसके बाद जो है अभी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी, तो बड़ी उनके अंदर भी स्ट्रेंथ है. आप सर क्या बोलना चाहते हैं, यानी एज एन एक्सपर्ट ही आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टीम को क्या करना चाहिए, या कि फिर पीसीबी को क्या करना चाहिए कि एक नई रूह आ जाए, एक नया पैशन आ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है पैशन के साथ लड़के नहीं खेल रहे हैं पाकिस्तान के. तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे ये पैशन आए, क्योंकि वो मंजन वंजन बेचने के ऊपर ज्यादा भी जोर है. है तो इंडिया में भी, इंडिया में भी बहुत होता है, लेकिन अभी इनको थोड़ा परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो जोर देना पड़ेगा. तो क्या आप कहते हैं?
मेरी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक जो पाकिस्तान का है कि भाई पाकिस्तान की टीम तो छोड़िए आप, पाकिस्तान के चेयरमैन, मैं पिछले 5 साल से आईसीसी मीटिंग्स में जा रहा हूं, 5 साल में 4 चेयरमैन ही चेंज हो चुके हैं. सो जब आपके टॉप बॉस जो कि आपके कहते ना आप कहीं काम कर रहे हो, आपके जब मालक ही जो है वो पता नहीं होता कौन होता है, तो नीचे काम करने वाले तो है वो तो हिलते रहते हैं इधर उधर. So I think what Pakistan has to look into something, there has to be a very stability at the board level. Because aaj main hu board mein, to maine koi aur vision dekha hai, aur board change hote hi naya vision aa jata hai. I think the biggest problem in my opinion, main to Canada mein hun, India mein hota to ye political issue ban jata, but main yahan se kahunga Canada, Pakistan ke liye sabse bada cheez hai ki they have to look into their board composition, ki board kaise banta hai, chairman kaun hota hai, kyunki pichle 4-5 saal mein 5 chairman hai, har chairman ne aake apna hi scheme laga di hai, so there is no consistency. To player bhi kya karenge, aur yahi jo chairman hai inhone hi try karna hota hai ki bhi hamara jo hai ki bhi hamara system kya hoga, hamara development system kya hoga, hamara grooming system kya hoga. So I think first thing that they have to do, and then jo bhi player inke pool mein hai unko ek thoda sa mauka de. Ye nahi ki bhi aapne ek to tournament ke liye khila diya aur dusre tournament mein aap naye ladkon ko dhoondne lag gaye, kyunki aaj agar India ki team mein acche ladke ye khel rahe hain, Shubman ho gaya ya fir Yashasvi ho gaya, aap dekh rahe ho kitne saalon se ye team ke sath dheere dheere lage hue the. Kabhi is samay 50 over ki team mein aap dekhoge ki bhi Arshdeep jo hai bahar baitha hua hai, जो कि इस समय इंडिया के लिए सबसे ज्यादा T20 विकेट्स ले चुका है, बट ये है कि वो सिस्टम में एक सिस्टम बनाया, वो सिस्टम को फॉलो, सिस्टम से बाहर नहीं जाएंगे. सो एक सिस्टम बनाने वाली जो बॉडी है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड आई थिंक टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, प्लेयर वहां पर बहुत है, सिर्फ उनको यह कि चांस और ग्रूम कैसे करना है. और ये बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, ये बोलते हैं, इनकी बातें भी सुननी चाहिए. वसीम इंजमाम हक, ये व्हाट दे आर टॉकिंग इज टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये तो खेले हुए हैं, बहुत तगड़े प्लेयर है. And I think there's no कोई छुपा हुआ कोई वो नहीं है कि भाई मैजिक पोशन है, ये तो सिंपल है, कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा मौका दें और टाइम दें और टीम पाकिस्तान की शुड बी रिबाउंडिंग बैक वेरी इजिली. इन माई ओपिनियन टैलेंट की कोई कमी नहीं है.
अच्छा सर, आपने तो बड़ी मेहरबानी कर दी, आपने कहा टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन मोहम्मद हफीज जो है हमारे, उनका कहना है कि टैलेंट की कमी है, क्योंकि अगर टैलेंट होता तो ऐसी परफॉर्मेंस ना होती. आमिर साहब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं.
कैसे बाजवा जी, खैरियत से हैं आप?
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया.
आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, जितने भी हमारे प्लेयर्स एक्स प्लेयर्स जो बैठे हुए तमाम ही मुख्तलिफ टेलीविजन पर बातें कर रहे हैं. सर ये भी कभी ना कभी बहुत मुख्तलिफ वक्त में इसका पीसीबी का जो है पार्ट रहे हैं, कोई सेलेक्टर रहा है, कोई कुछ रहा है, किसी को कोई सीईओ रहा है. मसला ये होता है कि जब ये चैनल पर बैठ के बात करते हैं तो इनके पास सारे आइडियाज भी आ जाते हैं, सारी जो है इनको खामियां भी नजर आने लगती हैं, लेकिन जैसे ये इस सारे मैं मतलब किसी से पर्सनल वो नहीं, लेकिन हमने ये देखा है कि जब भी ये किसी पोजीशन पे होते हैं वो फिर परफॉर्म नहीं कर पाते. पाकिस्तान में इशू सिर्फ यही आ रहा है कि राइट मैन ऑन द राइट पोजीशन वो फिट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो है वो नीचे भी जा रहा है, क्योंकि जब टॉप पर कोई चीज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो वो फिर ग्रास रूट तक जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाती है. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है कि राइट पर्सन द राइट पोजीशन नहीं फिट हो रहा है. और जितने भी बड़े प्लेयर हैं बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी फेल रहे हैं जब भी अपनी पोजीशन उन्होंने संभाली है.
I totally agree with that part also. कि भी कई बार ये भी लगता है कि भी ये जो प्लेयर हैं ये कुछ हद से ज्यादा क्रिटिसाइज कर जाते हैं
जी.
और बट मैं
क्योंकि सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री उठाकर देख लें, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, शुएब मलिक, हफीज, शुएब अख्तर, हम सब ये सब खेल कर आए और ये सब हार कर आए. ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ये कहेंगे हमने अपने को झंडे गाड़ दिए थे, कुछ कर दिया था, जो आज ये बातें कर रहे हैं कि ये टीम हार गई. हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमने जाहिर मैक्सिमम मैच जो है वो हार जाते हैं इंडिया से, जब भी खासकर हम वर्ल्ड कप की बात करें. तो इसमें मतलब कोई अपनी बातें अब इस वक्त करना, ये दूसरे प्लेयर्स के ऊपर इल्जाम देना, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि बस एक क्रिटिसिज्म करनी है, चैनल पर बैठ के टीआरपी लेनी है, तो कुछ भी बोले जाओ.
यानी आपकी बात, सी व्हेन आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट इंडिया पाकिस्तान गेम. इंडिया पाकिस्तान गेम जो प्रेशर गेम है, मेरे ख्याल से इनमें से किसी के पास भी कोई वो नहीं है. आई थिंक देयर आर सरफराज, आई थिंक इज वन ऑफ द गाइज हु कैन से कि मैंने तो इंडिया को चैंपियनशिप फाइनल में भी हराया हुआ है, नहीं तो अदरवाइज जो रिकॉर्ड है इनका रिसेंट पास्ट में इंडिया के साथ. बट व्हाट आई मीन इज कि भी जो ग्रास रूट सिस्टम है, जो सिस्टम्स है पाकिस्तान के, अब तो बाहर लोगों को भी दिखने लग गया है कि भाई ये कंसिस्टेंसी चाहिए, और हर आदमी यही बोलता है. सो आई एम जस्ट सेइंग कि इनकी पॉजिटिव बातें जो है जरूर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए. और आपकी बात 100% सही है कि ये लोग जब खुद भी वो बोर्ड और कुछ पोजीशंस में रहे थे एंड द सेम इश्यूज वर देयर, बट आई थिंक कि भाई पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है. अगर कोई आदमी डॉक्टर हफीज अगर बोल रहे हैं कि भाई टैलेंट नहीं है, तो आई थिंक आई कैन चैलेंज हिम ऑन दैट पार्ट. आई थिंक द pathways and the grassroots system and the यू नो द प्रॉपर चैनल इज नॉट देयर, कि भी एक सिस्टम से लड़का निकला हुआ, अब इंडिया ने वो चैनल बना लिए हैं कि भी आईपीएल हो गया, डोमेस्टिक क्रिकेट हो गया, आपके ए टीम का सिस्टम हो गया। आपको ये नहीं मालूम होगा कि शुभमन गिल ने इंडिया खेलने से पहले 50 से लेके 80 गेमें इंडिया ए के लिए खेलती थी, तब वो इंडिया के लिए खेला। सो वो सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई आपको एक आपको ना पक्का कर देते हैं, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज नीडेड इन पाकिस्तान। पहले जो डिपार्टमेंटल गेम्स वगैरह होती थी, अब डोंट कोट मी ऑन दैट, बट व्हेन आई टॉक टू सम पाकिस्तानी फ्रेंड्स हियर, जैसे कि पहले जब डिपार्टमेंटल गेमें होती थी, लीग वगैरह होते थे, तब वो दे वर मच मोर यू नो बेटर टू फाइंड द राइट टैलेंट एंड यू नो प्रोग्रेशन के लिए बहुत सही थे, बट अब वो चीजें नहीं है। बट एंड देन अगेन डोंट कोट मी ऑन दैट बिकॉज आई एम दिस इज नॉट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड इन्फॉर्मेशन, बट मेरे ख्याल से आपको कंसिस्टेंसी के लिए ना, ग्रास रूट सिस्टम के लिए आपको एक सिस्टम ऐसा चाहिए, जो मैनेजमेंट ऐसी चाहिए जो कि इम्प्लीमेंट कर सके 4-5 साल के लिए। ये पंचवर्षीय योजना ऐसी होती है, ये 6 महीने के क्विक फिक्स में आप कभी भी ये फिक्स नहीं कर पाओगे कि भाई T20 का वर्ल्ड कप है तो आमिर को खिला दो, अब ये आए तो कोई और आके खेल गया। यू हैव टू फाइंड अ कंसिस्टेंट वे एंड फाइंड अ वे हाउ दीज पीपल आर इवेल्युएटेड एंड ब्रॉट टू द टीम एंड देन दे आर गिवन अ प्रॉपर चांस कि भी एक बार पाकिस्तान टीम में भी आया तो थोड़ा मौका मिले, ये नहीं कि भी एक टूर कराया अच्छा नहीं चला तो नेक्स्ट प्लेयर के पास पहुंच गया।
जी बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बात है, ये पहले ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पे होता था और फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी, अब तो वो वैसे बिल्कुल नहीं हो रहा है पाकिस्तान में। और आपका जो सिस्टम की आपने बात की है, बिल्कुल पीसीबी ने ये रूल बना दिया है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा प्लेयर है, किंग कोहली भी क्यों नहीं है, रणजी तो हर किसी को खेलनी पड़ेगी। तो रणजी ट्रॉफी जब तक आप लोग नहीं खेलेंगे, उधर से हम आपको टैलेंटेड आपको फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो आप नेशनल टीम में नहीं आ पाओगे। तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम जो है ना, हमारे भी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का पहले होता था, जब तक वो और स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पे जब तक लड़कों के पास टैलेंट जाके उठाएंगे नहीं, उस वक्त तक टैलेंट अच्छा आएगा भी नहीं। तो रशपाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑलवेज ऑलवेज, और हम चाहेंगे आने वाले दिनों में भी आपके साथ हम जुड़ेंगे, बट फॉर टुडे वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैव टुडे, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे सर।
थैंक यू, ये हमारे साथ रशपाल बाजवा साहब, और बिल्कुल सही बात है शायद जी कि सिस्टम जो है वो इंडिया ने क्रिएट कर लिया, और वही सिस्टम जिसे सबसे पहले अगर मैं तारीफ करूं तो ऑस्ट्रेलिया नंबर वन,
जो नंबर वन सिस्टम
आज अब देखें ना, बॉलर्स नहीं है जैसे अभी बाजवा साहब ने कहा कि 3 मेन बॉलर्स ही नहीं है, उन्हें पता है कि हमारी बैटिंग वहाँ है और वो उसी के ऊपर जो है उन्होंने
3 बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं जी हम स्कोर ही इतना कर लें कि अगले बॉलर को वक्ता पड़ा रहे, चाहे हमारे बॉलर हैं कि नहीं है,
वो उनका वही बात है सिस्टम, और यही सिस्टम इंग्लैंड में भी है जाहिर है, और इसको इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया और प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक जाता नहीं, एक बहुत बातें हो रही थी बुमराह नहीं है तो बॉलिंग वीक हो जाएगी, लेकिन मैं
तो मिस करेंगे कह रहे थे लोग, मिस करेंगे,
मिस करने का मतलब ये होता है ना कि यार कमजोर हो गए,
लेकिन स्पिनर 3 थे ना उनके पास,
स्पिनर अच्छे हैं, फिर जो नए फास्ट बॉलर्स भी इनके खेल रहे हैं, शामी है, दूसरे नए बॉलर आए, मतलब ब्रिलियंट
ब्रिलियंट,
उनके अंदर
अक्सर यादव, वाओ क्या बात है, क्या बात है,
पैशन है जीतने के लिए,
बिल्कुल बिल्कुल।
और कल की जो बात हुई, बहुत सारे मीम्स ऐसे चल रहे थे कि जी मतलब हारे या जीते तो सही है, वो टिकट जाया हुआ क्योंकि मैच में मजे नहीं, लोग लाखों रुपए के टिकट खरीद कर जो है वहां
25,000 धर्म का सोचे जो था, 25,000 धर्म का वो था,
अब आप एक बिल्कुल वन साइडेड मैच करें खेलेंगे और कहीं नजर नहीं आ रहा था कि कोई एफर्ट डाली जा रही,
यानी कि आप सोचें कि कैनेडियन $5,000 बनते हैं, आप सोचो जरा, तो इतने इतने का $5,000 का टिकट था जो लोगों ने खरीदा, लेकिन अब मेरे मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ज्यादा मजा आएगा भी नहीं क्योंकि पाकिस्तान निकल गया, तो इंडिया पाकिस्तान का तो मैच अब दूसरा हो नहीं सकता,
नहीं अब तो नहीं हो सकता,
अब नहीं हो सकता, तो अब मुझे लगता
है रमजान की तैयारी
फीका पड़ेगा भी,
अब रमजान की तैयारी करें, टीम समेत रमजान की तैयारी करें,
अपने मुल्क पहुंच गया ना इसीलिए रमजान पहले,
रमजान
पहले का, हम इतने मजहबी हैं हमको रमजान अपनी फैमिली के साथ अपने मुल्क में करना है,
बस
हमको नहीं रहना यूएई में और ये गेम शेम नहीं करना,
रमजान में खेला भी नहीं जाता, आप रोजा रख के खेले हैं, बहुत जुल्म है। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया तमाम जी आपका हमारे शामिल होने,
लेकिन वही बात है कि आप देखें कि पहले जो है वो फील्डिंग इंडिया ने की थी और 50 ओवर की फील्डिंग भी की थी, उसके बावजूद कोहली ने जो है 100 रन बनाए, सही वाह सलाम है कोहली,
बहुत फिट,
वाह वाह।
चलें जी, इंशाल्लाह आने वाले अगले मैचेस में भी आपके साथ चैंपियंस ट्रॉफी भी चल रही है, आपसे डिस्कस करते रहेंगे। शैल जी आपका बहुत शुक्रिया मजा शामिल होने का,
तो
इंशाल्लाह जिंदगी रही और आप जिंदा रहे, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात,
ठीक है,
बहुत शुक्रिया। और तमाम सामेईन का नहीं, वो मैं नोट किया हुआ, अभी नहीं जाएगा। تمام سامعین کا اور ناظرین کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا. آپ سن رہے ہیں 770 AM 647-872-49 ڈائل کر کے آپ 24/7 سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ eawaz.com اور ہمارا آئی پی ٹی وی تمام ہی باکسز پر موجود ہے. آپ اسے اردو پاکستانی کیٹیگریز میں ڈھونڈ سکتے ہیں. چلیں جناب, پوری مینجمنٹ کی طرف سے, عارفہ مظفر صاحبہ کی طرف سے, ماجد زمان صاحب کی طرف سے, ہمارے انجینئر ذیشان احمد کی طرف سے اجازت لیں گے. میں آپ کا ہوسٹ عامر احمد, انشاءاللہ زندگی رہی اور صحت رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم.
سامعین کرام,